तीसरा, भाषा और साहित्य। चंपा में राजकीय कार्यों और शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। वहां से संस्कृत के जो अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 100 से भी अधिक है। ये अभिलेख ऐसी कृतियों में उत्कीर्ण हैं जो भारतीय हैं। इन्हें पढ़कर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि चंपा के संभ्रांत वर्ग के लोग अपने दैनिक व्यवहार में संस्कृत भाषा को ही प्रयुक्त किया करते थे। भारत से जो उपनिवेशक चंपा में जाकर बसे थे वे संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत साहित्य को भी अपने साथ वहां ले गए थे। यही कारण है कि चंपा के चारों वेदों से लगाकर रामायण, महाभारत, पुराण, षड् दर्शन, व्याकरण, काव्य आदि संस्कृत वांग्मय के सभी अंगों का पठन पाठन हुआ करता था। माइसोन के एक अभिलेख में राजा भद्रवर्मा के चारों वेदों का ज्ञाता चातुर्वेद कहा गया है। 914 ईस्वी में उत्कीर्ण पो नगर के अभिलेख के अनुसार राजा इंद्रवर्मा तृतीय मीमांसा, षट तर्क, षट दर्शन, जिनेन्द्र सुमी, बौद्ध दर्शन, काशिका सहित व्याकरण, आख्यान और शैव उत्तरकल्प, शैव आगम में निष्णात तथा विद्वानों में मूर्धन्य था। पूनगर अभिलेख का एक श्लोक इस प्रकार है, मीमांसा षट तर्क जिनेन्द्र सुमी, सस्सा कशिका व्याकरणो दधोच, आख्यान शैवोत्तर कल्पमीन सति इतेस परिप सत्कविनाम। 1081 में उत्कीर्ण माइसोन के अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्मा वाक्पति बृहस्पति के समान शास्त्रों का पंडित था और नानाविध विषयों के ज्ञाता, नाना ज्ञान विदोपी भी उसके सम्मुख अपना मुख नहीं खोल पाते थे। इसी प्रकार चंपा के अन्य अनेक राजाओं को भी शास्त्रों में पारंगत कहा गया है। जय इंद्र वर्मा सप्तम व्याकरण ज्योतिष तथा महायान दर्शन का पूर्ण पंडित होने के साथ साथ नारदीय तथा भार्गवीय धर्मशास्त्रों में निष्णात था। अभिलेख में उपलब्ध इन संकेतों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वेद, वेदांग, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि भारतीय शास्त्रों का चंपा में भी भली भांति पठन पाठन होता था और वहां के राजा भी इनमें पूर्ण पांडित्य प्राप्त करता गौरव की बात समझते थे। रामायण, महाभारत, पुराण तथा संस्कृत के काव्यों का चंपा में इतना अधिक प्रचार था कि वहां के अभिलेखों में बार बार रामायण आदि के पात्रों के नाम देकर उनसे राजाओं की तुलना की है। दशरथ और उनके पुत्र राम का अभिलेख भी में अनेक बार उल्लेख हुआ है। दशरथ निरपजोष्यम राम इत्याशय यम श्रेयति विधि पुरोगा श्री रहो युक्ति रूपम। गोवर्धन को धारण करने वाले मधु, कंस, केशी और चानूर आदि का संहार करने वाले और मधु कैट भारी कृष्ण से भी अनेक अभिलेखों में राजा की तुलना की गई है। इस प्रसंग में 801 ईस्वी में उत्कीर्ण गलय लमोव अभिलेख के ये वाक्य उल्लेखनीय है, गोवर्धन गिरी धरण सुरासुर मुनि विनिंद चरणाबिंदस्तु तित मधुकंसा सुरकेशी चानूण रिष्ट प्रलंब निधोणोपी मधु कैटभ्य रुधिर रस संध्यायामान चरणक मणि दर्पण। राजा प्रकाश धर्म के माइसून अभिलेख में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का उल्लेख है, अश्वत्थामा द्विज श्रेष्ठाद द्रोण पुत्रात् द्व्याप्याम तम। इसी प्रकार युधिष्ठिर, दुर्योधन, धनंजय, पांडुपुत्र आदि का भी अभिलेखों में भी अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि पौराणिक देवी देवताओं से संबंध रखने वाले कथाएं तो चंपा के लोगों को भली भांति ज्ञात थी ही। ऊपर जो थोड़े से उदाहरण अभिलेखों से दिए गए हैं वे यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि चंपा में भारत के धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का उसी ढंग से पठन पाठन होता था जैसे कि स्वयं भारत में होता था। चंपा में भारत के ग्रंथों की कितनी अधिक संख्या में सत्ता थी इसका परिचय एक चीनी ग्रंथ से भी मिलता है। जिसके अनुसार चीन के सेनापति लियू फंग ने 605 ईस्वी में जब चंपा पर आक्रमण किया था तो चंपापुर से जो लूट वह अपने साथ ले गया था उसमें 1350 बौद्ध ग्रंथ भी थे। चौथा धर्म, याज्ञिक धर्म। चंपा के लोग मुख्यतया पौराणिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यद्यपि बौद्ध धर्म भी वहां प्रचलित था। पर जैसे पौराणिक धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भारत में यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म की सत्ता थी और पौराणिक धर्म के प्रचार के बाद भी यज्ञों का अनुष्ठान होता रहा, संभवतः वही दशा चंपा में भी थी। इसीलिए चंपा के अनेक अभिलेखों में यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है। धर्म महाराज श्रीभद्र वर्मा के 14 अभिलेख में अग्नये तवा जुष्टम करिष्यामि मंत्र द्वारा यज्ञ में आहुति देने के लिए प्रयुक्त होने वाले धृत आदि को पवित्र कर किए जाने का उल्लेख है। वाजसनेय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी याज्ञिक अनुष्ठान में हवि को पवित्र करने के लिए इसी ढंग के मंत्र का विधान है। अग्नये तवा जुष्टम प्रोच्छामि वेदी रसी बही से तवा जुष्टम प्रोच्छामि बही रसी स्त्रु गभ्यस्तवा जुष्टम प्रोच्छामि। ब्राह्मण ग्रंथों के इस मंत्र की स्पष्ट छाया श्री भद्र वर्मा के अभिलेख पर विद्यमान है। यह तभी संभव था जबकि चंपा में याज्ञिक कर्मकांड का भी भली भांति प्रचार हो। वो चन्न में उपलब्ध श्रीमान राजकुल के अभिलेख में विश्वजीत अतिरात्र यज्ञ का स्पष्ट रूप से संकेत विद्यमान है। यह सर्वमेध यज्ञ का अन्यतम अंग था और इसे अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। इस अभिलेख में यज्ञकर्ता द्वारा वह सब स्वर्ण रजत तथा सब स्थावर व जंगम धन संपत्ति दान कर दी गई थी जो उसके पास थी। यत कंचित रजतम स्वर्णमपि वास्थवा रंजम कोष्ठागारक नम प्रियहिते सर्व विशिष्टम मयाम। राजा प्रकाश धर्म के माइसोन अभिलेख में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है और उसे सर्वाधिक पुण्य देने वाला कहा गया है। अभिलेखों में अनेक स्थानों पर यज्ञों यज्ञ क्रियाओं तथा यज्ञ भाग का उल्लेख आया है और एक स्थल पर तो पार्वत्य प्रदेश गिरी प्रदेश में राजा श्री नृंद्र वर्मा द्वारा भक्ति और शुद्ध मन से शिव क्षेत्र तथा यज्ञ क्षेत्र के प्रदान किए जाने का भी उल्लेख है। शिव यज्ञ क्षेत्र द्वयम् शिखी शिखा गिरम प्रदेशम भक्तया शुद्धेन मन सैव दत्तवान। शैव धर्म, कंबुज देश के समान चंपा में भी पौराणिक धर्म के शैव संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार था। चंपा में 3 ऐसे स्थान हैं जहां बहुत से प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इनमें 2 ऐसे हैं जहां शैव मंदिरों की ही सत्ता है। ये स्थान मायसून और पूनगर हैं। इनके मंदिरों का निर्माण शिव तथा उनसे संबंध देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही किया गया था। संभवतः राजा भद्र वर्मा द्वारा निर्मित भद्रेश्वर शिव का मंदिर चंपा में सबसे पुराना शिव मंदिर था। अपने नाम से शिव का विशेषण भद्र वर्मा से भद्रेश्वर रखने की जो प्रथा इस राजा द्वारा प्रारंभ की गई थी, बाद के राजाओं ने उसका अनुसरण किया और शंभु वर्मा से शंभु भद्रेश्वर, इंद्र वर्मा से इंद्र भद्रेश्वर और इंद्र परमेश्वर, विक्रांत वर्मा से विक्रांत रुद्रेश्वर, हरि वर्मा से हरि वर्मेश्वर और जय हरि वर्मा से जय हरि रलिंग रिलेश्वर आदि नामों से शिवलिंगों को स्थापित किया गया। राजा भद्र वर्मा द्वारा भद्रेश्वर शिव के जिस मंदिर का निर्माण 4वीं सदी के अंत या 5वीं सदी के शुरू में किया गया था, वह चंपा का सर्व प्रधान सर्वमान्य राष्ट्राय मंदिर की स्थिति प्राप्त कर गया और बाद में उसके समीप अन्य भी बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया। कोई 1 सदी के लगभग बाद यह मंदिर आग लगने से ध्वंस हो गया था और राजा शंभु वर्मा द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यह इमं शंभु भद्रेशम पुनः स्थापितवान भुवि, तब से इसे शंभु भद्रेश्वर का मंदिर कहा जाने लगा। भद्र वर्मा, शंभु वर्मा, प्रकाश धर्म, इंद्र वर्मा द्वितीय आदि कितने ही राजाओं ने अपार धन संपत्ति, खेत, दास आदि इस शिव मंदिर के लिए प्रदान किए थे। समझा जाता था कि यह शंभु भद्रेश्वर शिव चंपा राज्य का रक्षक देवता है और उसके राजा तथा प्रजा का सुख व हित इसी की अनुकंपा पर निर्भर है। 875 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार भद्रेश्वर का यह लिंग भगवान शिव द्वारा स्वयं भृगु को दिया था। भृगु ने इसे उरोज को प्रदान किया और उरोज द्वारा यह चंपा में प्रतिष्ठापित किया गया। चंपा में यह विश्वास दृढ़ मूल हो गया था कि भद्रेश्वर शिवलिंग साक्षात शिव द्वारा पूजा के लिए चंपा भेजा गया है और उसकी महिमा अपरंपार है। चंपा के राजा अपने को उरोज का वंशज मानते थे और इस लिंग के प्रति विशेष भक्ति का भाव रखते थे। राजा जय इंद्र वर्मा सप्तम ने इस प्राचीन लिंग के मंदिर को विभूषित करने के लिए उसके शिखरों को सोने से और अन्य अनेक भागों को चांदी से मढ़वाया था। इस कार्य में उसने एक मन के लगभग सोना तथा 450 मन के लगभग चांदी खर्च की थी। निसंदेह चंपा के निवासियों की दृष्टि में भद्रेश्वर शिव की अपूर्व महिमा थी। भद्रेश्वर या शंभु भद्रेश्वर के शिव मंदिर के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से शिव मंदिर चंपा में विद्यमान थे, जिनका निर्माण विविध राजाओं द्वारा कराया गया था और जिनके लिए उन्होंने बहुत सा धन तथा भूमिखंड दान में दिए थे। अभिलेखों में शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित करने तथा उनके लिए प्रदान किए गए धन का विशद रूप से वर्णन है। पोनगर में शिव का एक मुखलिंग स्थापित था, उसकी भी बहुत महिमा थी। अनुश्रुति के अनुसार इसे राजा विचित्र सागर ने द्वापर युग के 5911वें वर्ष में प्रतिष्ठापित कराया था। 774 ईस्वी में मुखलिंग का यह मंदिर कतिपय विदेशी जातियों के आक्रमणों के कारण नष्ट हो गया था। इन आक्रांताओं ने समुद्र मार्ग से चंपा में प्रवेश किया था। राजा सत्यवर्मा ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया और तब से इसमें प्रतिष्ठापित मुखलिंग सत्य मुखलिंग कहा जाने लगा। 9वीं सदी के प्रारंभ में राजा इंद्र वर्मा ने वीरपुर में एक मंदिर का निर्माण कर उसमें इंद्र भोगेश्वर शिव के लिंग को प्रतिष्ठापित कराया था। 889 ईस्वी में राजा इंद्र वर्मा द्वितीय ने महालिंग देव की स्थापना की थी। इसी प्रकार से कितने ही शिवलिंगों की स्थापना के संबंध में चंपा के अभिलेखों से परिचय प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि चंपा में शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित करना और उनके लिए दान देना पुण्य का कार्य समझा जाता था और राजाओं के अतिरिक्त अन्य संभ्रांत व्यक्ति भी शिव मंदिरों के निर्माण तथा उनमें शिवलिंगों की स्थापना के लिए तत्पर रहा करते थे। राजा इंद्र वर्मा द्वितीय का मंत्री मणि चैत्य था। उसके छोटे भाई ईश्वरदेव ने भी श्री स्वरदेव व दिदेव शिव के लिंग को प्रतिष्ठापित किया था। यद्यपि शिव की पूजा के लिए मुख्यतया लिंग का ही आश्रय लिया जाता था, पर मानव के रूप में शिव की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में उन्हें प्रतिष्ठापित करने की पद्धति भी चंपा में विद्यमान थी। मानव के रूप में शिव की जो मूर्तियां चंपा में प्राप्त हुई हैं, उनके सिर पर मुकुट है और चटाएं कंधे पर फैली हुई हैं, सांप उनके कंठ में लिपटे हुए हैं। शिव की मानवाकार मूर्तियां बैठी हुई भी बनाई गई थीं और खड़ी हुई भी। एक मूर्ति में शिव को तांडव नृत्य करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। चंपा के अभिलेखों में शिव की महिमा को जिस ढंग से वर्णित किया गया है, वह पुराणों में प्रतिपादित शिव के गुणों तथा उनके साथ संबंध रखने वाली कथाओं के पूर्णतया अनुरूप है। ब्रह्मा विष्णु शूर असुर ब्रह्मर्षि राजर्षि वह सब देवता जिसका सम्मान करते हैं, जिसकी महिमा तथा वैभव का कोई अंत नहीं है, वह शिव स्वयं शमशान भूमि में विचरण करता है। यह कैसी अद्भुत बात है। यो ब्रह्मा विष्णु त्रिदशाधिपति सुरा सुर ब्रह्मानि परसि मान्यः तथापि भूते जगतामनुनृत्य चस्मासान भूमवाति चित्रमेतत। शिव संसार का गुरु है, आदि पुरुष है, त्रिपुर का विजयी है और योगियों द्वारा ही साध्य है। जगद गुरु धा स्त्री पुर विजयी योगाभि साध्य। शिव की शक्ति असीम है। महान असुरों के पुरों का मर्दन कर उन्होंने अपने को विक्रम को प्रकट किया है। श्वेत भस्म को वह अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। सिद्ध चारण यक्ष सब उनके उपासक हैं। कामदेव को उन्होंने भस्म किया है। उनके तीन नेत्र होते हैं। शिव के संबंध में ये एवं इस प्रकार की जो भी बातें पौराणिक साहित्य में पाई जाती हैं, चंपा के अभिलेखों में भी वे विद्यमान हैं। चंपा के धार्मिक मंतव्य एवं विश्वासों पर भारत का कितना अधिक प्रभाव था, यह इससे स्पष्ट है। अभिलेखों में शिव के लिए महादेव, महेश्वर, परमेश्वर, शंभु, रुद्र, शर्व, शंकर, पशुपति आदि जो बहुत से नाम प्रयुक्त किए गए हैं, वे भी चंपा पर भारतीय प्रभाव के सूचक हैं। शिव के अतिरिक्त शैव संप्रदाय के अन्य देवी देवताओं की भी चंपा में पूजा की जाती थी। पौराणिक परंपरा में देवी को शिव की शक्ति माना गया है और उमा, पार्वती, गौरी, भगवती आदि अनेक नामों से इस शक्ति को प्रकट किया जाता है। शिव के समान देवी या भगवती की मूर्तियां भी चंपा में अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठापित की गई हैं। 889 ईस्वी में उत्कीर्ण भू नंग अभिलेख में श्री महालिंग की स्थापना के साथ साथ शिव की प्रिय इश प्रिया देवी की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का भी उल्लेख है। 914 ईस्वी में उत्कीर्ण पू नगर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा इंद्र वर्मा तृतीय ने स्वर्ण से निर्मित कलधौत देहा देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया था। जब कंबुज देश ने चंपा पर आक्रमण किया तो उसके सैनिक इस मूर्ति को भी उठा ले गए थे। बाद में इसके स्थान पर प्रस्तर निर्मित मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई। चंपा के अन्यतम दक्षिण प्रदेश कौठार में भगवती कौठारेश्वरी देवी के मंदिर विद्यमान है। परमेश्वर वर्मा, परम बोधिसत्व हरि वर्मा और जय इंद्र वर्मा सप्तम द्वारा इस मंदिर के लिए दिए गए दान का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। कौठारेश्वरी देवी के मंदिर के अवशेष इस समय भी पू नगर में उल्लेख है। कौठार में इस देवी की बहुत महिमा थी। पौराणिक परंपरा के अनुसार गणेश और स्कंद कार्तिक को शिव के पुत्र माना जाता है। चंपा में गणेश की बहुत सी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। ये मूर्तियां प्रायः बैठी हुई दशा में हैं। गणेश का शरीर स्थूल है और उनका मुख हाथी के मुख के सदृश है। उनके बाएं हाथ में पात्र है, दाएं में मोदक। शरीर पर उन्होंने यज्ञोपवीत भी धारण किया हुआ है। माइसोन से प्राप्त एक मूर्ति के गणेश चार हाथों में माला, लेखनी, पात्र और हार लिए हुए हैं। गणेश की ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिन्हें खड़ी हुई दशा में बनाया गया है। चंपा में स्कंद, कार्तिकीय अथवा कुमार की भी पूजा प्रचलित थी। इस समय तक स्कंद की 5 मूर्तियां चंपा से उपलब्ध हुई हैं। साथ ही वहां के अभिलेखों में भी अनेक स्थानों पर इस देवता का उल्लेख मिलता है। चंपा में उपलब्ध हुई कार्तिकीय स्कंद की 2 मूर्तियों में उन्हें मयूर पर आरूढ़ बनाया गया है और 2 में गैंडे पर। भारत की पौराणिक परंपरा के अनुसार कार्तिकीय का वाहन मोर को माना जाता है, गैंडे को नहीं। पर चंपा में गैंडे पर आरूढ़ स्कंद की मूर्ति की सत्ता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि चंपा में पौराणिक देवी देवताओं के संबंध में कतिपय नई मान्यताओं का भी विकास हो गया था। शिव का वाहन नंदी को माना जाता है। मंदिरों के प्रवेश द्वारों तथा आंगनों से नंदी की भी बहुत सी मूर्तियां चंपा में मिली हैं। वैष्णव धर्म। शैव संप्रदाय के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय का भी चंपा में प्रचार था। चंपा के अभिलेखों में नारायण, पुरुषोत्तम, हरि, गोविंद, माधव आदि अनेक नामों से विष्णु का उल्लेख किया गया है। अनेक राजाओं के शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए विष्णु से उनकी उपमा दी गई है। 799 ईस्वी में उत्कीर्ण इंद्र वर्मा प्रथम के अभिलेख में राजा के संबंध में यह कहा गया है कि उसने विष्णु के समान अपनी शक्ति द्वारा शत्रुओं का विनाश किया था। शक्तया विष्णु रीव प्रमथ्य च रिपुन धर्मस्थिति पालयेत। इसी प्रकार गले लमोव अभिलेख 801 ईस्वी के अनुसार इस राजा के सम्मुख कोई शत्रु वैसे ही नहीं टिक पाता था जैसे कि विष्णु के सामने असुर अपने को असहाय पाते थे। तस्य सम्मुखतः स्थातुम न सक्तो वा परो युधि विष्णु यथा शूरशाभूत दृष्टवा तंतु परांग मुख। विष्णु को जहां शक्ति का प्रतीक माना गया है वहां साथ ही उन्हें अनादि भी कहा गया है। भगवतः पुरुषो तत्मशय विष्णु रनादे। चंपा के निवासी भगवान विष्णु या नारायण को संपूर्ण संसार का पालन करने वाला समस्त भुवन परी रक्षण समर्थ भाव। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया बनाकर शयन करने वाला क्षीराण वतरंग शांग गतल शयानांत भोग भुग जग परिसेवित चार भुजाओं वाला चतुर्भुज और अनादि मानते थे। वे विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की भी पूजा किया करते थे। चंपा के अभिलेखों में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और कंस चाणूर आदि का संहार करने वाले कृष्ण का उल्लेख किया गया है। चंपा में विष्णु की भी अनेक मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति में भगवान विष्णु पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनके चार हाथों में पद्म चक्र शंख और गदा है। उन्होंने यज्ञोपवीत भी पहना हुआ है। कुछ मूर्तियों में वे गरुड़ पर आसीन है और कुछ में अनंतनाग पर लेटकर विश्राम कर रहे हैं। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है जिस पर ब्रह्मा ध्यान अवस्था में बैठे हैं। एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। पौराणिक परंपरा में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है। चंपा में जहाँ विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ दिखाया गया है, वहाँ गरुड़ की पृथक मूर्तियाँ भी मिली हैं। इन मूर्तियों में मुख तो गरुड़ पक्षी का है पर शेष शरीर सिंह का है, जैसे शिव की शक्ति देवी या उमा को माना गया है, वैसे ही विष्णु की शक्ति लक्ष्मी श्री या पद्मना है। इनका भी उल्लेख चंपा के अभिलेखों में विद्यमान है। लक्ष्मी की भी अनेक मूर्तियां चंपा में उपलब्ध हुई हैं। कुछ मूर्तियों में उनके चार हाथ दिखाए गए हैं और कुछ में दो। ब्रह्मा पौराणिक हिंदू धर्म में जिन तीन देवी देवों की त्रिमूर्ति की उपासना की जाती है, उनमें शिव और विष्णु के अतिरिक्त तीसरे देव ब्रह्मा हैं। चतुर्मुख तथा स्वयं उत्पन्न स्वयंभू के नाम से चंपा के अभिलेखों में इनके उल्लेख है। राजा भद्रवर्मा के अभिलेख में महेश्वर उमा और विष्णु के साथ ब्रह्मा को भी नमस्कार किया गया है। नमो महेश्वरम उमांच प्र ब्रह्माणम विष्णुमेव च। जो मिन्ह के अभिलेख के अनुसार राजा जय परमेश्वर वर्मा ने अपने सेनापति रामदेव को स्वयं उत्पन्न स्वयंभू या ब्रह्मा की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा की मूर्तियों को भी चंपा में प्रतिष्ठापित किया जाता था। यही कारण है कि वहां इस देव की अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। अन्य पौराणिक देवी देवता शिव विष्णु और ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से पौराणिक देवी देवताओं की पूजा चंपा में की जाती थी और प्रचलित थी और उनकी मूर्तियों को भी वहां के मंदिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था। इन अन्य देवताओं में इंद्र कुबेर वासुकी वरुण सूर्य चंद्र और पृथ्वी प्रधान थे। राजा भद्रवर्मा ने अपने अभिलेख में महेश्वर उमा विष्णु और ब्रह्मा के अतिरिक्त पृथ्वी वायु आकाश अप जल या वरुण और ज्योति अग्नि को भी नमस्कार किया है। निसंदेह ये सब भी देवता माने जाते थे और चंपा में इनकी भी पूजा की जाती थी। इंद्रवर्मा द्वितीय के दोंग दियोंग अभिलेख में ब्रह्मा विष्णु और शंकर के अतिरिक्त इंद्र वासुकी सूर्य चंद्र वरुण ऋषि अग्नि और अभयद बुद्ध का भी उल्लेख है। इंद्र देवता का उल्लेख अनेक अन्य अभिलेखों में भी आया है। एक स्थान पर उसे वज्र हस्त वज्रपाणी नाम से कहा गया है। सुहनत पार सन्यानी वज्रहस्त इवासुरान। चंपा में इंद्र की दो मूर्तियां भी मिली हैं जिनके साथ ऐरावत हाथी भी बनाया गया है। यम के लिए चंपा के अभिलेखों में धर्मराज शब्द का प्रयोग किया गया है और कुबेर के लिए धनत का। राजा प्रकाश धर्म ने 7वीं सदी में कुबेर के एक मंदिर का भी निर्माण कराया था। चंपा के निवासी कुबेर को धन संपदा की वृद्धि करने वाला तथा अहित से रक्षा करने वाला मानते थे। चंपा में पौराणिक धर्म की सत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह बता देना भी आवश्यक है कि भारत में स्वर्ग और नरक तथा लोक व परलोक आदि के जो विचार प्रचलित थे वे चंपा में भी विद्यमान थे। चंपा के अभिलेखों में स्वर्ग और नरक का बहुत बार उल्लेख हुआ है। देव मंदिरों को दी गई दान दक्षिणा एवं धन संपत्ति का हरण करने वाले व्यक्ति सदा सदा के लिए या वह चंद्र दिवाकरों अपने परिवार सहित नरक में निवास करते हैं और देव मंदिरों की संपत्ति की रक्षा करने वाले व्यक्ति सूर्य गणों के साथ स्वर्ग में रमण करते हैं। इस भाव के श्लोक या वाक्य प्रायः उन सभी अभिलेखों में विद्यमान है जिनमें किसी मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख हो। ऐसे श्लोक निम्नलिखित हैं: इंद्र भद्रेश्वर सैव सर्वदेवम महीतले ये रक्षांति रमन्ते ते स्वर्गगे सुरगणे सदा, ये हरन्ति पत्यन्ते नरके वा कुलैसह यावत सुचित्त चंद्रश्च तावान्त निरुपदास्किता। बौद्ध धर्म। यद्यपि चंपा में प्रधानतया पौराणिक हिंदू धर्म का प्रचार था, पर उनके साथ साथ बौद्ध धर्म की भी वहां सत्ता थी। संभवतः शुरू में चंपा में बौद्ध धर्म ही अधिक प्रचलित था। सातवीं सदी के शुरू में जब चीन के एक सेनापति लियू फंग ने चंपापुर पर आक्रमण किया था 605 ईस्वी, तो वहां से जो लूट वह अपने देश को ले गया था उसमें 1350 बौद्ध ग्रंथ भी थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग सातवीं सदी के उत्तरार्ध में चंपा आया था। उसने लिखा है कि इस देश में बहुसंख्यक बौद्ध आर्य सम्मितीय निकाय के हैं और कुछ सर्वास्तिवाद निकाय के। 829 ईस्वी में सामंत नामक एक व्यक्ति ने जिन बुद्ध और शंकर की दोनों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया था। ये सब तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सातवीं सदी से पूर्व ही चंपा में बौद्ध धर्म का भली भांति प्रचार हो चुका था और वह शैव तथा वैष्णव धर्मों के साथ साथ वहां फलता फूलता रहा। मायसोन और पू नगर में पौराणिक हिंदू मंदिर बड़ी संख्या में विद्यमान है और दोंग दुओंग में बौद्ध मंदिर। इससे सूचित होता है कि दोंग दुओंग चंपा में बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। वहां से बुद्ध तथा बोधिसत्वों आदि की मूर्तियां भी अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। चंपा के अभिलेखों में बुद्ध के लिए जिन लोकेश्वर सुगत अभयद शाक्य मुनि आदि विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार बहुत से अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा शिवलिंग तथा पौराणिक मूर्तियों के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है, वैसे ही कुछ अभिलेखों में बौद्ध मूर्तियों की स्थापना की भी बात कही गई है। राजा जय इंद्र वर्मा ने 875 ईस्वी में लक्ष्मेंद्र लोकेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी और भिक्षु संघ के लिए एक विहार का भी निर्माण कराया था। मृत्यु के पश्चात इस राजा को परम बुद्ध लोक नाम दिया गया, जिससे सूचित होता है कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पर जय इंद्र वर्मा ने श्री महालिंग शिव के लिए भी दासों सहित कृषि योग्य भूमि को दान में दिया था। श्री महालिंग देवाय प्रदात क्षेत्रम सदा सगम श्री जय इंद्र वर्मे दशांश सत्रोज्ञो लोक धर्मविद। वस्तुतः पौराणिक और बौद्ध धर्म चंपा के में साथ साथ फल फूल रहे थे और वहां के राजा भी दोनों धर्मों के मंदिरों का निर्माण करा के तथा दोनों को धन संपत्ति दान कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना प्रकट किया करते थे। जय इंद्र वर्मा ने जिस लक्ष्मेंद्र लोकेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी वह अवलोकितेश्वर बोधिसत्व न होकर तथागत बुद्ध थे, जो पद्मासन से बैठकर जनता को उपदेश देते थे। 902 ईस्वी में स्थविर नागपुष्प ने प्रमुदित लोकेश्वर विहार का निर्माण कराया था और उसकी प्रशस्ति में ये श्लोक लिखवाए थे। वज्र धातु रसो पूर्व श्री शाक्य मुनि शासनात् सुन्योपि वज्र धिदेतु बुद्धानामलयो भवत् पद्माधातुरतौ लोकेश्वरे हु त्रिजनालय अमिताभावचो युक्तया महाशून्य वो बोध। चक्रधातु रसो शून्यातितो वैरोचनाज्ञां वज्र सत्वतस्य हेतु स्यात् तृतयो भोज्य नायलय। इस प्रशस्ति का एक दृष्टि से बहुत महत्व है। इससे सूचित होता है कि दसवां सदी के प्रारंभ में चंपा में महायान संप्रदाय ही नहीं अपितु वज्रयान का भी प्रचार हो चुका था। वज्र धातु पद्म धातु चक्र धातु और वज्र सत्व सदृश शब्द संप्रदाय की सत्ता की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं। दोंग दुओंग में बौद्ध मंदिरों के जो भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं विस्तार की दृष्टि से वे मायसोन और पू नगर के शैव मंदिरों की तुलना में अधिक विशाल हैं। वहां से बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें एक मूर्ति 5 फीट के लगभग ऊंची है। बुद्ध की एक कांस्य मूर्ति भी वहां से प्राप्त हुई है, जिसे खड़ी हुई दशा में बनाया गया है। चंपा में अब तक जो भी बुद्ध मूर्तियां मिली हैं उनमें कांस्य मूर्ति को सबसे अधिक कलात्मक समझा जाता है। दोंग दुओंग के अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्थानों से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि चंपा में बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। बुद्ध के अतिरिक्त अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व तथा प्रज्ञा पारमिता आदि की बौद्ध मूर्तियां भी चंपा से मिली हैं। बुद्ध की कुछ मर्ण मूर्तियों पर धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध की अभय मुद्रा आदि भी अंकित है। चंपा में कोई बौद्ध स्तूप या उसके भग्नावशेष अब तक नहीं मिले हैं, यद्यपि मिट्टी के कतिपय खिलौने पर स्तूप के चित्र अंकित हैं।